ओम शांति। सात जुलाई 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ी सुनी और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे 6 बजे शाम को 4 बजे 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिस पर आप जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए गूगल मीट और यूट्यूब लाइव जैसे भी आपको सुविधा हो दोनों लिंक पर आप जुड़ सकते हैं। दोनों लिंक चारों समय के लिए रोजाना के लिए एक ही रहते हैं। आप किसी भी लिंक से आप जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो आप इसी वीडियो को जो आप देख रहे हैं इसके नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, जिस पर आप सहज जुड़ सकते हैं या अपना नंबर व्हाट्सएप लिंक से मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और यदि आपका कोई सुझाव हो तो वो भी आप दे सकते हैं। सा ओम शांति। आज की मुरली का साथ मीठा मीठा बाबा कैसे मीठे बच्चे, तुम बहुत रॉयल स्टूडेंट हो, तुम्हें बाप टीचर सतगुरु, तुम्हें बाप टीचर सतगुरु की याद में रहना, तुम्हें बाप टीचर सतगुरु की याद में रहना है। अलौकिक खिदमत सेवा करनी है, याद हमने तीनों को एक रूप में करना है और सेवा किसकी करनी है, अलौकिक सेवा करनी है। अलौकिक सेवा से क्या मतलब होगा, अलौकिक सेवा से क्या मतलब होगा, अलौकिक सेवा क्या होती क्या होगी, हाँ जी, हाँ रूहानी सेवा, जो सेवा लौकिक, लौकिक माना शरीर, लौकिक माना शरीर, जो सेवा हम लौकिक शरीर के द्वारा नहीं कर सकते, इस संसार में दिखाई देने वाली सेवा नहीं, जो सेवा दिखाई दे रही है वो क्या हो जाएगी, लौकिक, जो इन आंखों से देखी जा सकती है, जिनको हम इन आंखों से महसूस कर सकते हैं वो है लौकिक सेवा और ये है अलौकिक सेवा, क्योंकि हम इसे किसी भी आंख के द्वारा किसी भी साधन के द्वारा देख नहीं सकते, किसी भी साधन के, हाँ जी मनसा सेवा भी, हाँ मनसा सेवा कह सकते हैं, क्यों नहीं, परंतु इसे लौकिक शब्द के साथ अलौकिक करेंगे, क्योंकि वहां हम जो भी सेवा करते हैं उसके अंदर कोई ना कोई आधार होता है, यहाँ पर मतलब कोई आधार नहीं, मतलब किसी को दिखा भी नहीं सकते कि हम कोई सेवा कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की हम कोई सेवा करते हुए नहीं, वह दिखाई देने जिन जो आंखों से दिखाई देता है वो सेवा हम नहीं कर रहे, इसलिए इसे हाँ जी आत्मा की सेवा होगी उन्नति के लिए, आत्माओं की सेवा और किसी और के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि जो हम अलौकिक सेवा कहते हैं उसका मतलब ही होता है लौकिक या व्यक्त, व्यक्त लौकिक एक ही बात है। जैसे अव्यक्त ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए, उन्होंने ये लौकिक शरीर को क्या किया है, छोड़ दिया। जब कोई आत्मा लौकिक शरीर को छोड़ देती है तो वे अलौकिक हो जाती है। तो इसलिए इस संसार की बातें कोई भी नहीं जिसमें किसी भी प्रकार का ऐसा कोई बात ना हो जो हम ये कह सके कि हाँ ये जो है ना संसार में हमें दिखाई दे रही है, वो दिखाई नहीं देगी। इसे कहते हैं हम अलौकिक सेवा, अव्यक्त सेवा। व्यक्त माना शरीर, अव्यक्त माना अशरीर, अशरीरी अलौकिक, ये एक ही बात हो जाती है। प्रश्न, जो अपने आप को बेहद का पारधारी समझकर चलते हैं उनकी निशानी सुनाओ, उनकी क्या निशानी होगी? उत्तर, उनकी बुद्धि में कोई भी सूक्ष्म व स्थूल देहधारी की याद नहीं आएगी, ना स्थूल याद आएगी ना सूक्ष्म याद आएगी, याद ही नहीं आएगी किसी भी। जब सूक्ष्म मतलब आकारी जिसको हम आकार दिखाई देता हो नहीं, क्योंकि हमने याद का मतलब यहाँ पर देखो ना कितनी क्लियर बात हमें समझ में आती है। उनकी बुद्धि में कोई भी सूक्ष्म व स्थूल देहधारी की याद नहीं होगी। हम किसी को देख नहीं रहे इन आंखों से, ये आंखें यूज नहीं हो रही, परंतु सूक्ष्म के लिए बुद्धि भी कोई चित्र नहीं बना पा रहे, क्योंकि हम आकारी का मतलब क्या है कि हम इन आंखों से तो नहीं देख रहे हैं परंतु हम बुद्धि से विजुलाइज तो कर रहे हैं ना। जिसको हम विजुलाइज कर रहे हैं वो बुद्धि चित्र बनाती है, बुद्धि जिस चित्र को बनाती है वो विजुलाइज है, परंतु यहाँ हम बुद्धि के द्वारा उसका कोई चित्र भी नहीं बना रहे। समझ रहे हैं बात को?
हाँ, याद का मतलब विजुलाइज करना है या
नहीं? नहीं है, तो ये देखो ना कितनी क्लियर लाइन है। उनकी बुद्धि में कोई भी सूक्ष्म वास्तु, तो यह है कि मैं आंखों से देख रहा हूँ, मैं आपको आंखों से देख रहा हूँ तो मैं आपको याद कर रहा हूँ, मेरे सामने राम की मूर्ति है, कृष्ण की मूर्ति है, कोई भी है मैं उसको देख करके याद कर रहा हूँ। ब्रह्मा बाबा का चित्र है, शिव बाबा का लोगो है, मैं उसको देख कर याद कर रहा हूँ, तो वो भी स्थूल याद हो गई, वो क्या हो जाएगी स्थूल याद, समझ रहे? और सूक्ष्म, और वो भी सूक्ष्म के साथ क्या लगा है, बुद्धि में, क्योंकि विजुलाइज क्या करना है कि मेरे सामने ब्रह्मा बाबा का चित्र तो नहीं है, मैं तो बाबा रूम से बाहर हूँ, परंतु मैं बाबा के चित्र को अपनी बुद्धि के अंदर देख रहा हूँ, मैं परम धाम को देख रहा हूँ, सूक्ष्म वतन को देख रहा हूँ, वो देख रहा हूँ मुझे। जैसे कहा जाता है हम सूरज चांद सितारों से भी पार जा रहे, हम अपनी बुद्धि में इन आंखों से नहीं देख रहे, हम अपनी बुद्धि से देख रहे होते हैं कि मैं आत्मा एक स्टार के रूप में सूरज चांद तारों से भी ऊपर, बादलों से भी ऊपर, उसके भी ऊपर, उसके भी ऊपर, अब मैं सुनहरे रंग के प्रकाश में प्रवेश करूं, तो मैं अपनी बुद्धि के अंदर सुनहरा रंग देख रहे हैं। अब मैं सामने शिव बाबा है, ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा है, ब्रह्मा बाबा के आकार में शिव बाबा है, अब मैं शिव बाबा से किरणें प्राप्त कर रही हूँ, तो वहां से किरणें निकलना शुरू हो जाती हैं और वो मेरे पास आ रही हैं। परंतु प्रैक्टिकल बात हमको समझना है कि कोई भी किरणें नहीं आ रही, ये है बुद्धि के द्वारा हम सूक्ष्म देख रहे हैं, एक हम स्थूल देख रहे हैं इन दोनों आंखों के द्वारा, एक हम सूक्ष्म देख रहे हैं बुद्धि के द्वारा, मतलब वो देखना भी याद नहीं होगी। इससे ज्यादा क्लियर लाइन क्या होगी? यह एक बात को और शांति धाम घर को याद करते रहेंगे, वो सिर्फ एक बाप को याद करेंगे। अब बाप इन आंखों से दिखाई देने वाला नहीं है तो फिर कैसे बाप को याद करें? बाप क्या है? बाप की श्रीमत। बाबा क्या है? बाबा की श्रीमत। मैं बाबा की श्रीमत के अनुसार याद कर रहा हूँ, मीन्स चल रहा हूँ। मेरा कोई भी कर्म है वो बाबा की श्रीमत के अनुसार, तो मैं बाबा को याद कर रहा हूँ। और शांति धाम को याद करना है, और शांति धाम भी मेरे सामने कोई है नहीं, परम धाम तो एकदम जीरो है। जैसे मैं आत्मा हूँ ऐसे ही मुझ आत्मा का पिता परमात्मा है, ऐसे ही हमारा घर है, जहाँ कुछ भी नहीं। जहाँ मैं आत्माओं को भी देखने की कोशिश करूँ तो क्या देख रहा हूँ? मैं कोई ना कोई आकार बनाऊंगा, हम ढेर सारी आत्माएं हैं, नहीं, वो भी जीरो। आत्मा भी जीरो, परमात्मा भी जीरो, परम धाम भी जीरो। अब जीरो को क्या देखे? उसका आकार इतना छोटा है कि हम किसी सूक्ष्म दर्शी यंत्र से देख ही नहीं सकते। श्री मत को अपने जीवन में अप्लाई करना, बाबा की श्री मत को अपने जीवन में अप्लाई करना कि मैंने किसी को दुख नहीं देना, मैंने किसी को दुख नहीं देना, मैंने सबको सुख देना, मैंने हाँ जी थोड़ा सा कौन सा श्लोक? हाँ, सारे धर्मान परित्यज्य माम एकम, याद करो, है ना? तो इंक्लूड हो जाता है, परंतु वहां पर भी वो अपने को देह समझते और देह के आधार पर कृष्ण को कहते, कृष्ण को समझते कि कृष्ण के पास जाओ। परंतु बात सारी यहाँ है कि ज्ञान की बात तुरंत पॉइजन बन जाती है जब देह अभिमान आ जाता। इसलिए बाबा ने आज एकदम अलौकिक खुदाई खिदमतगार बनना है, सेवादारी बनना है, और मुरली की शुरुआत की पहली लाइन में ही सारा कुछ खत्म कर दिया। यदि हम ध्यान से समझें तो बुद्धि से हम स्थूल भी नहीं देख सकते, सूक्ष्म भी नहीं देख सकते। बुद्धि से हम सूक्ष्म तो देख सकते हैं ना, जैसे आप अपने पिताजी को याद करें, आपके पिताजी की शक्ल आपके सामने है, माता जी की शक्ल आपके सामने है, बट वो क्या है? सूक्ष्म याद। वो क्या है? सूक्ष्म याद। और आपके पिताजी सामने है, आप उनको नमस्ते कर रहे हैं, तो ये है स्थूल याद। स्थूल में दोनों आंखों के द्वारा हम देख रहे हैं, सूक्ष्म में हम बुद्धि से सोच भी नहीं सकते। बुद्धि स्वयं को आत्मा समझने के लिए भी हमें कोई बुद्धि से कोई अपने लिए आकृति बनाने की जरूरत नहीं। यदि मैं अपनी बुद्धि के अंदर एक लाइट को देखने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं इन दोनों आंखों के बीच ब्रिकुटी के बीच में मैं एक ज्योति हूं, मैं एक ज्योति हूं, मुझे स्टार दिखाई देने लग जाएगा। मैं कई दिन तक एक स्टार देखने की कोशिश करूंगा, मैं बार बार उसके लिए, मैंने वो भाई जी का एग्जाम्पल देख रहा था, कौन सा भाई है वो जो स्टार के विंग के हैं, राजीव भाई, और राजीव भाई का जो एग्जाम्पल देख रहा था कि मैंने इसका अभ्यास करने के लिए वो जाना स्टार स्टार को देखना शुरू किया, और उसके बाद मैं एकांत में जाकर स्टार को देखता, तो स्टार देखते देखते कुछ दिन बाद अब मुझे स्टार देखने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, मैं जैसे ही संकल्प करता हूँ मेरी बुद्धि में स्टार आ जाता है, मैं बुद्धि से उसको देख रहा हूँ, कार को देख रहा हूँ, आत्मा को देख रहा हूँ। अब ये क्या हो रहा है? बुद्धि से आत्मा को तो देख रहा है, परंतु वो स्टार जो है मैं नहीं हूं, मैं एक बुद्धि से इमेज क्रिएट कर दी और मैं उसको देख रहा हूं। तो राजीव भाई की जो बात है वो मैं देख रहा था, मैंने कहा ये तो विजुलाइजेशन हो गया, जब विजुलाइजेशन हो गया तो वो याद करना नहीं होता, वो सूक्ष्म याद हो गई। तो हमें बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझना, बाबा ने बड़ा बड़ा क्लियर कर दिया है, क्योंकि बलिहारी एक ही है, हमें कुर्बान तो एक पर जाना है। कुर्बान जाने का मतलब ही हमारी बुद्धि में स्पष्ट है कि कहना मानना। यदि हम परमात्मा का कहना मान रहे हैं तो हम परमात्मा पर कुर्बान जा रहे हैं, और यदि हम कहना नहीं मान रहे हैं तो हम परमात्मा पर कुर्बान नहीं जा रहे। बड़ा क्लियर हमें बुद्धि में समझ लेना है कि हम परमात्मा पर कुर्बान जाने का मतलब समझे कि कहना मानना। यदि हम कहना नहीं मान रहे हैं तो हम परमात्मा पर कुर्बान नहीं जा रहे। हमें हर हालत में परमात्मा का कहना मानना ही, श्रीमत पर चलना ही याद है। श्रीमत पर चलना ही बाबा बाप को याद करना है, के बाबा को याद करना। जैसे बाप सारी दुनिया की खिदमत करते हैं, अब देखो हम इसी बात से बहुत ध्यान से समझेंगे। बाप जैसे खिदमत करते हैं, क्या किसी को दिखाई देते हैं? क्या हमारे सिवाय किसी और को पता लग रहा है कि हम परमात्मा से पढ़ रहे हैं? परमात्मा हमारी सेवा करने के लिए रोजाना आते हैं, और बाबा हमारी सेवा कर रहा है, हमें दिखाई नहीं देता, किसी और को दिखाई नहीं देता। आवाज जो हमने सुनी, जिन्होंने बाबा के सामने बाबा के बाबा के ब्रह्मा बाबा के तन में आए हुए हैं या दादी गुजार के तन में आए हुए हैं, तो भी किसी ने उसे देखा नहीं, केवल आवाज आई तो आवाज से हमने सुना, आकाशवाणी जिसे बाबा ने कहा। तो दुनिया ने कहा कि आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी का भी राज हमें समझाया, आकाशवाणी का राज समझ में आया? बाबा ने अभी मुरली में भी समझाया था, किसको पता है आकाशवाणी? कोई नहीं बता सकता आकाशवाणी क्या होती है? कहाँ से? नहीं नहीं, आकाशवाणी क्यों कहा उसको? हाँ जी, हाँ फेफड़े बताने, आपने बताना है कि हवा जो है ये पाइप है, मुरली इसको कहा जाता है, आकाशवाणी कहा जाता है, इसको मुरली कहा जाता है। मुरली और आकाशवाणी का संबंध बाबा ने समझाया था कि जैसे एक बांस की बांसुरी होती है, मुरली होती है, उसमें जगह जगह पर छेद होते हैं, उसके अंदर हम हवा देते हैं और उसके ऊपर जहाँ से सुराख है उन पर हम रुकावटें खड़ी करते हैं तो उसके अंदर स्वर निकलता है, ध्वनि निकलती है, गीत निकलता है। तो इसी प्रकार से हमारे फेफड़े से लेकर मुंह तक, नाक, ये सब जो है ना हमारी एक मुरली है, पाइप है। उस पाइप में से हवा आती है, जब हवा उसमें से निकलती है तो हमारे गले से, दांत से, होंठ से, तालू से, मुद्दन्य से, नाक से, हम उस हवा के अंदर रुकावटें पैदा करते हैं और उन रुकावटों के आधार से ये आवाज बनती है, ये आकाशवाणी, ये आकाशवाणी, ये मुरली है, ये मुरली है, ये आकाशवाणी, मुरली को आकाशवाणी का है और आकाशवाणी को मुरली का। ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मुरली जो है वो बांस वाली मुरली नहीं, अगर शिव बाबा आकर मुरली भी बजाते हैं तो कौन सी बजाते हैं? ब्रह्मा बाबा के तन की मुरली का आधार लेते हैं, तन का आधार लेकर उनके फेफड़े के द्वारा जो सांस आती है उस सांस के रास्ते रास्ते में रुकावटें पैदा करने का काम शिव बाबा आत्मा या परम आत्मा करते हैं, जिसके लिए आवाज निकलती है। बाकी सांस तो उसी प्रकार के लेना भी है और छोड़ना भी है। जब सांस छोड़ना है तो उसके रास्ते में रुकावट पैदा करना, ये काम शिव बाबा करते हैं। इसलिए हम उसे ब्रह्मा बाबा की आवाज और शिव बाबा की आवाज के डिफरेंस, दादी की आवाज में और बाबा की आवाज का डिफरेंस, टोन, तरीका, हम अंतर समझ सकते हैं। तो समझ में आया कि शिव बाबा मुरली चला रहा है, ब्रह्मा बाबा मुरली चला रहा है, या दादी के तन से शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा मुरली चला रहे। दादी मुरली, दादी की मुरली अलग है, मेरी मुरली अलग है। अब जो मैं पढ़ रहा हूँ ये शिव बाबा की मुरली को पढ़ के सुना रहा हूँ, और जब मैं बिना पढ़े मंथन करूंगा या जो बोलूंगा वो मेरी पर्सनल मुरली रहेगी। बात समझ में आ गए होंगे। आकाशवाणी और मुरली, तो उसके अंदर भी मैं देख पा रहा हूँ कि किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से दिखाई नहीं देता, सुनाई देता है परंतु दिखाई नहीं देता। इन कानों कान सुन रहे हैं परंतु कोई भी नहीं समझ सकता कि इनको पढ़ाने वाला कौन। और बाबा को हम डायरेक्ट सुन रहे हैं तो ये भी क्या है, हमारे पास सूक्ष्म सामने है ना हमारा, और हमें समझ में आता है कि शिव बाबा सामने बोल रहे हैं। अब हमारे सामने शिव बाबा नहीं, अब हमारे सामने मुरली हमें दिखाई दे रही है, जो आप पहले स्क्रीन पर देख पाते थे या यूट्यूब पर अभी भी आप देख पा रहे हैं। तो उस प्रकार से भला हमारे को समझ में आ रहा है कि हमारी जो वाणी है और या ये जो चित्रण है ये हम देख पा रहे हैं, ये हमारे। इसलिए बाबा ने, इतनी कमाल की बात है, बाबा ने इसलिए मुरली पढ़ने को योग नहीं कहा। मुरली पढ़ना योग नहीं है, क्यों? क्योंकि आप कुछ ना कुछ इन आंखों से देख रहे हो ना, और गीत सुनना योग नहीं है क्योंकि हम कानों से उसे सुन रहे हैं ना। वंडरफुल है बाबा का जो ज्ञान है, बाबा की जो पढ़ाई है, बड़ी वंडरफुल। हमें कानों से सुनना नहीं, कानों से सुन रहे हैं, पढ़ाई है, जानकारी है। हम किसी बड़े भाई बहन की क्लास को सुन रहे हैं तो वो हम सुन रहे हैं, वो बाबा की याद नहीं है। हम उससे बाबा के द्वारा जो ज्ञान है उस ज्ञान को अपने अंदर ले रहे हैं। जिसको बाबा ने कहा वो भोजन खाना है, वो भोजन पराया है। जब आप उस भोजन को, चाहे वो मुरली हो, चाहे वो क्लास हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसे आप सुन रहे हो, देख रहे हो, पढ़ रहे हो, किसी भी तरीके से इंटैक्ट कर रहे हैं उसको, तो वो आपका भोजन है। परंतु वो भोजन जितना आप चबाएंगे, जितना आप चबाएंगे, वो तुम्हारा क्या बन जाएगा, खून बन जाएगा, तुम्हारा शरीर का अंग बन जाएगा। जितना चबाएगा कौन? क्या हम उसे मुंह से चबाएंगे? नहीं, बुद्धि अपने अंदर मंथन करेगी। मन मना भाव, जितना हम मन मना भाव करेंगे, जितना हम अपनी बुद्धि के अंदर उसको बैठ कर स्वीकार कराएंगे, वो है या बाबा की श्रीमत को जितना हम बुद्धि को स्वीकार कराएंगे, बुद्धि जब उसके अनुसार एक्ट करेगी तब वो संस्कार बनेगा, जिन संस्कारों को आत्मा ने लेकर के जाना है। उसमें मुख का कोई काम नहीं, कान का कोई काम नहीं, आंख का कोई काम नहीं, शरीर के किसी अंग का कोई काम नहीं। वो है याद, जब हम अपने आप को याद की यात्रा में अपने आत्मा में संस्कार सुधार दे, हम अपने संस्कारों को सुधार दे, वो है याद की यात्रा। जितना हम अपने संस्कारों को सुधारते जाएंगे उतना हम याद की यात्रा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। सारा कंसेप्ट भी आज बाबा ने वंडरफुल तरीके से बदल दिया। वो तो पहले तो हमें समझ में भी नहीं आया था ना ये बात। आज की मुरली में देखो कहां से कैसे किस बात को स्पष्ट करता है बाबा, ये अब आप समझ गए होंगे लौकिक को और अलौकिक। पतितों को पावन बनाते, पतितों को पावन बनाते हैं, मेन बात है पावन बनना, और पावन बनना है आत्मा को। आत्मा को पावन बनना मतलब आत्मा ने अपने एक एक देह के संस्कार को खत्म करना है, केवल रूहानी संस्कार रहे जिनके आधार पर हम रूहों के साथ बेस्ट व्यवहार कर सकें। जैसे बाप सारी दुनिया की खिदमत करते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, ऐसे बच्चे भी बाप समान खिदमतगार बन जाते, बच्चे भी बाप समान खिदमतगार बन जाते। जैसे बाबा किसी को दिखाई नहीं देता और सारे विश्व की आत्माओं की सेवा करता है, ऐसे ही हम आत्माएं भी सबकी सेवा करें परंतु किसी को भी दिखाई ना दे। वो है मनसा सेवा, वो सिर्फ है मनसा सेवा। ये स्थूल सेवा है, वाचा सेवा कर रहे हैं, कर्मणा सेवा कर रहे हैं, ये स्थूल सेवा है, ये भी करनी है, परंतु सबसे बेस्ट बाबा ने कहा है मनसा सेवा। बस अब पानी बदल गई सारी किसानी। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को सावधानी देते हैं, यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप के आगे बैठे हो, ये भी बुद्धि में लाओ कि हम बाप के आगे भी बैठे हैं, टीचर के आगे भी बैठे हैं। नंबर वन बात है हम आत्मा हैं, बाप भी आत्मा है, टीचर भी आत्मा है, गुरु भी आत्मा है, एक ही है ना। ये नई बात तुम सुनते हो, तुम कहेंगे बाबा हम तो कल्प कल्प ये सुनते हैं, तो बुद्धि में ये याद रहे। बाप पढ़ाते हैं हम आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती हैं, ये ज्ञान इस समय ही तुम बच्चों को मिलता है ऊंच से ऊंच भगवान द्वारा। वे सभी आत्माओं का बाप है जो वर्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, सबकी सदगति करते हैं, यानी घर ले जाते हैं। कितने कितने को ले जाएंगे ये सब तुम जानते हो। मच्छरों सदृश सभी आत्माओं को जाना है, सतयुग में एक ही धर्म पवित्रता सुख शांति सब रहता है। तुम बच्चों को चित्र पर समझाना बहुत सहज है, बच्चे भी नक्शे पर समझ जाते हैं, इंग्लैंड है, ये है, फिर वे याद पड़ जाता है। ये भी ऐसे हैं, एक एक स्टूडेंट, एक एक स्टूडेंट को समझाना होता है। महिमा भी एक ही है, शिवाय नमः, ऊंच से ऊंच भगवान। रज का बाप घर का बड़ा होता है ना, वो हद के, ये है सारे बेहद का के घर का बाप। ये सिर्फ टीचर भी है, तुमको पढ़ाते हैं, तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम स्टूडेंट भी रॉयल हो, बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, प्रजापिता ब्रह्मा भी जरूर यहाँ चाहिए, उन बिगर काम कैसे चल सकता है, और जरूर बुजुर्ग ही चाहिए क्योंकि अडॉप्टेड है ना, तो बुजुर्ग चाहिए। श्री कृष्ण तो बच्चे बच्चे बोल ना सके, बुजुर्ग सोचता है, बच्चों को थोड़े ही कोई बाबा कहेंगे, तो बच्चों को भी बुद्धि में आना चाहिए हम किसके आगे बैठे हैं। अंदर में खुशी भी होनी चाहिए, स्टूडेंट कहाँ भी बैठे होंगे उनकी बुद्धि में बाप भी याद आता है, टीचर भी याद पड़ता है। उनको तो बाप अलग टीचर अलग होता है, तुम्हारा तो एक ही बाप टीचर गुरु है। ये बाबा भी तो स्टूडेंट है, पढ़ रहे हैं, सिर्फ लोन पर रस दिया हुआ है और कोई फर्क नहीं, बाकी तुम्हारे माफी की है। इनकी आत्मा भी यही समझती है जो तुम समझते हो, जो तुम समझते हो। इनकी आत्मा कौन है? इनकी आत्मा ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी यही समझती है। बलिहारी है ही एक, इन उनको ही प्रभु ईश्वर कहते हैं। ये भी कहते हैं अपने को आत्मा समझ, एक परमात्मा को याद करो, बाकी सब सूक्ष्म वास्तुल देहधारी को भूल जाओ। तुम शांति धाम के रहने वाले हो, तुम हो बेहद के पारधारी। ये बातें और कोई भी नहीं जानते। दुनिया भर में सर्विस का किसी को भी पता नहीं। यहाँ जो आते हैं वे समझते जाते हैं और बाप की सर्विस में आते जाते हैं। ईश्वरीय खिदमतगार ठहरे ना, बाप भी आए हैं खिदमत करने के लिए, पतितों को पावन बनाने की खिदमत करते हैं, राज्य गंवाकर फिर जब दुखी होते हैं तो बाप को बुलाते हैं। जिसने राज्य दिया उनको ही बुलाएंगे। तुम बच्चे जानते हो बाप सुख धाम का मालिक बनाने आए हैं। दुनिया में यह किसको पता नहीं है, तो सब भारतवासी एक धर्म के हैं, ये है ही मुख्य धर्म। तो जरूर जब ना हो तब तो बाप आकर स्थापना करे। बच्चे समझते हैं भगवान जिसको सारी दुनिया अल्लाह गॉड कह पुकारती है, वे यहाँ ड्रामा अनुसार कल्प पहले वापिस आए हैं। ये है गीता का एपिसोड जिसमें बाप आकर स्थापना करते हैं। बाप आकर क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। दाया भी जाता है ब्राह्मण और देवी देवता क्षत्रिय नहीं कहते, ब्राह्मण देवी देवताएं नमा कहते हैं, क्योंकि क्षत्रिय तो फिर भी दो कला कम हो गए ना। स्वर्ग कहा जाता है नई दुनिया, त्रेता को नई दुनिया थोड़े ही कहेंगे। पहले पहले सतयुग में है एकदम नई दुनिया, और यह है पुराने से पुरानी दुनिया, फिर नए से नई दुनिया में जाएंगे। हम अब उस दुनिया में जाते हैं, तब तो बच्चे कहते हैं हम नर से नारायण बनते हैं, कथा भी हम सत्य नारायण की सुनते हैं, प्रिंस बनने की कथा नहीं कहते, सत्य नारायण की कथा है। वे नारायण को अलग, वे नारायण को अलग समझते हैं, परंतु नारायण का कोई जीवन, नारायण की कोई जीवन कहानी नहीं, जीवन कहानी तो नहीं है। नारायण की क्या है? जीवन कहानी तो नहीं है। ज्ञान की बातें तो बहुत है ना, इसलिए सात रोज भक्ति में। हाँ जी, हाँ बोलो। सात रोज भक्ति में रहना पड़े, इसलिए क्या करना पड़ेगा, 7 रोज भट्टी में रहना पड़े। स्क्रीन दिखाई दिया आपको, आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ जी, हाँ, मेरी जरूरत नहीं है, मैं तो स्क्रीन में हूँ ही ना। स्क्रीन सीधी है कि उल्टी है?
उल्टी है भाई जी, आप सीधी
है, आप सीधी
दिखाई,
आप सीधी है, साफ दिखाई दे रहा है?
साइड में दिखाई दे रहा, स्क्रीन में ही दिखाई दे।
हाँ जी,
साइड में हो गया भाई जी, वो
साइड में हो गया। आप
थोड़ा नीचे पड़े,
आप
मैं भाई जी थोड़ा ऊपर बनवा।
अच्छा,
आप
ठीक है, ठीक है, इसका जुगाड़ करें। आप देखो,
आप इसे थोड़ा सेट
वही सेट तो करते हैं, बोल दिखाई दे रही है आप यहाँ
उल्टा
है, स्क्रीन उल्टी हो गई। क्योंकि मैं नहीं देख पा रहा हूँ, आपके जैसे दिख रहा होगा, आप बताएं। थोड़ी देर बाद एक्सरसाइज करेंगे, कुछ तो दिखाई दे रहा है। तो 7 रोज बच्ची में रहना पड़े, परंतु ऐसे भी नहीं कि यहाँ भट्टी में रहना है। ऐसे तो फिर भट्टी का बहाना कर बहुत देर आ जाएंगे। पढ़ाई सवेरे और शाम को होती है, पढ़ाई कब होती है? सवेरे और शाम को होती है। दोपहर में वायुमंडल ठीक नहीं होता, रात्रि को भी 10 से 12 तक बिल्कुल खराब वातावरण होता, 10 बजे से 12 बजे तक बिल्कुल खराब टाइम है। यहाँ तुम बच्चों को भी मेहनत करनी है, याद में रहे सत्य प्रधान बनने की। वहां तो सारा दिन काम धंधे में रहते हो। ऐसे भी बहुत होते हैं जो धंधा दौरी करते हैं, फिर पढ़ते भी हैं जास्ती अच्छी नौकरी करने के लिए। यहाँ भी तुम पढ़ते हो तो टीचर को याद करना है। किसको याद करना है? टीचर को याद करना है, करना पड़े। जो पढ़ाते हैं अच्छा टीचर समझकर ही याद करो, तो भी तीनों ही इकट्ठे याद आ जाते हैं। बाप, टीचर, गुरु तुम्हारे लिए बहुत सहज है। तो झट याद आने चाहिए। ऊंचते ऊंच बाप ही है जिससे हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। जिससे हम क्या ले रहे हैं? स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। आवाज चली गई थी क्या? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? पहले बीच में चली गई थी क्या? आवाज आ रही थी आपको? अच्छा, ठीक है। बाबा ने कहा दोपहर का नहीं, दिन का, रात का कहा है, 10 बजे से 12 बजे तक का। हाँ जी, दोपहर का बोला है, अभी देखते हैं। बाप टीचर इकट्ठे आ जाते हैं, ये है ना। दोपहर में वायुमंडल ठीक नहीं होता, पर ज्यादा भीड़ भाड़ लोगों में, ज्यादा संकल्प चलना, ऐसा ही होगा ना। अब यहां स्क्रीन ठीक है ना। रात्रि का भी 10 से 12 बजे तक बिल्कुल खराब टाइम होता, 10 से 12 बजे तक बिल्कुल खराब टाइम होता है। यहां तुम बच्चों को भी मेहनत करनी है, याद में रहे सतो प्रधान बनना है, याद में रहकर क्या करना है, सतो प्रधान बनने की। वहां तो सारा दिन काम धंधे में रहते हैं ना, काम धंधा दुनिया का झमेला चलता रहता है ना, काम धंधा दोरी करते हैं, फिर पढ़ते भी हैं, फिर पढ़ते भी हैं। जास्ती अच्छी नौकरी करने के लिए पढ़ते भी हैं, जास्ती अच्छी नौकरी करने के लिए। तो टीचर को याद करना पड़े जो पढ़ाते हैं। अच्छा टीचर समझ कर ही याद करते हैं ना, अच्छा टीचर समझ करके ही याद करते हैं। क्योंकि अच्छा टीचर है इसलिए उसका कहना मानना ही है। तीनों ही इकट्ठे याद आ जाते हैं ना, तीनों ही कैसे याद आते हैं, इकट्ठे याद आते हैं ना। मतलब एक बाप को याद करो और तीनों ही याद आ जाए। हाँ जी, अब ये स्क्रीन आपको बड़ा दिखाई दे रहा है या वैसे ही दिखाई दे रहा है? हाँ जी, क्या हुआ, बड़ा दिखने लगा ना। बाप टीचर गुरु तुम्हारे लिए बहुत सहज है तो झट याद आना चाहिए। ये तुम्हारा, ये हमारा बाबा भी है, टीचर और गुरु भी है, ऊंच से ऊंच बाप है जिससे हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। हम स्वर्ग में जरूर जाएंगे, हम स्वर्ग में जरूर जाएंगे, स्वर्ग की स्थापना जरूर होनी चाहिए, स्वर्ग की स्थापना जरूर होनी चाहिए। तुम पुरुषार्थ सिर्फ करते हो ऊंच पद पाने के लिए, ये भी तुम जानते हो। मनुष्य को भी पता पड़ेगा, तुम्हारी आवाज फैलता रहेगा, तुम्हारा आवाज फैलता रहेगा। तुम ब्राह्मणों का लौकिक, तुम ब्राह्मणों का अलौकिक धर्म है, श्रीमत पर अलौकिक सेवा में तत्पर रहना। ये भी मनुष्य को पता पड़े पड़ जाएगा कि तुम श्री मत पर कितना ऊंच काम कर रहे हो, तुम श्री मत पर कितना ऊंच काम कर रहे हो। तुम्हारे जैसी अलौकिक सर्विस और कोई कर न सके, तुम्हारे जैसी अलौकिक सर्विस और कोई कर न सके। तुम ब्राह्मण धर्म वाले ही ऐसा कर्म करते हो तो ऐसे कर्म में लग जाना चाहिए, इसमें ही बिजी रहना चाहिए। बाप भी बिजी रहते हैं, तुम भी बिजी रहते हो ना। तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो, वे तो पंचायत मिलकर सिर्फ पालना करती रहती है। जहां तुम गुप्त वेश में क्या कर रहे हो, तुम हो इनकॉग्निटो। इनकॉग्निटो जानते हैं, गुप्त, जो दिखाई नहीं देते, अननोन, वॉरियर, योगा, नॉन वायलेंस, अहिंसक हो और अननोन वॉरियर हो। इनका अर्थ भी कोई समझते नहीं। तुम डबल अहिंसक हो। अहिंसक सेना बड़ी हिंसा तो ये विकार की है, जो पतित बनाती है, इनको ही जीतना है। भगवानों वास का महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण जगत जीत है ना, भारत जगत जीत था, ये विश्व के मालिक कैसे बने, ये भी बाहर वाले समझ ना सके। इस समझने में बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए, बड़े बड़े इम्तिहान पढ़ने वाले वालों की विशाल बुद्धि होती है ना, तो बड़े बड़े इम्तिहान पास करते हैं, उनकी बुद्धि क्या होती है, विशाल होती है। तुम श्री मत पर अपना राज्य स्थापन करते हो, तुम किसको भी समझा सकते हो। विश्व में शांति थी ना, और कोई राज्य नहीं था। स्वर्ग में अशांति हो ना सके। बहिष्ठ को कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। सिर्फ बगीचा थोड़े ही होगा, मनुष्य भी चाहिए ना। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बहिष्ठ के मालिक बन रहे हैं। तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए और ऊंच चालाक होने चाहिए। तुम बाहर के कोई भी सुख को नहीं जानते, तुम बाहर के कोई भी सुख को नहीं चाहते हो। तुम्हें संसार का कोई सुख नहीं चाहिए। इस समय तुमको बिल्कुल सिंपल रहना है। अभी तुम ससुर घर जाते हो, ये है पियर घर। ये क्या है, ये है पियर घर, जहां तुम्हें डबल पिताएं मिले हैं, एक निराकार ऊंच से ऊंच, दूसरा फिर साकार। वे भी ऊंच से ऊंच। अभी तुम ससुर घर विष्णुपुरी में जाते हो, इसलिए इनको कृष्णपुरी नहीं कहेंगे, इसलिए इनको कृष्णपुरी नहीं कहा जाता। चाहेंगे। बच्चों की पूरी नहीं होती, बच्चे की पूरी नहीं होती, विष्णु पूरी अर्थात लक्ष्मी नारायण की पूरी। तुम्हारा है राजयोग तो जरूर नरसी नारायण बनेंगे, जरूर क्या बनेंगे, नरसी नारायण बनेंगे। तुम बच्चे ही सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं, बाबा सच्चा खुदाई खिदमतगार है। उसे कहते हैं जो कम से कम 8 घंटा, कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं, कोई कर्म बंधन ना रहे, तब खिदमतगार बन सकते हो, तब खिदमतगार बन सकते हो और कर्मातीत अवस्था हो सकती है। नर से नारायण बनना है तो कर्मातीत अवस्था जरूर चाहिए, कर्म बंधन होगा तो सजा खानी पड़ेगी। याद की मेहनत भी बड़ी कड़ी है, युक्ति बहुत सहज है, सिर्फ बाप को याद करना, सिर्फ बाप को याद करना है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, योग के लिए ही नॉलेज है जो बाप आकर सिखलाते हैं। श्री कृष्ण कोई योग थोड़े ही सिखलाते हैं, श्री कृष्ण को फिर सुदर्शन चक्र दे दिया है। वे भी चित्र कितना रॉन्ग है, वे भी चित्र कितना रॉन्ग है। अभी तुमको कोई चित्र आदि भी याद नहीं करना, सब कुछ बोलो बड़ा, कोई चित्र याद नहीं करना। कितनी लाइन क्लियर बाबा कह रहे हैं कि कोई भी चित्र आपको याद नहीं करना है। यह पढ़ाई है, पढ़ाई का समय है। दुनिया को भूल, अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करना, बाप को याद करना, तब ही पाप नाश होंगे। बाप कहते हैं पहले तुम अशरीरी आए थे, फिर तुमको जाना है, तुम ऑलराउंडर हो, वे होते हैं हद के एक्टर और तुम हो बेहद के एक्टर। अभी तुम समझते हो हमने अनेक बार पार्ट बजाया है, अनेक बार तुम बेहद के मालिक बने हो, बेहद के मालिक बनते हो। इस बेहद के नाटक में फिर छोटे छोटे नाटक भी हैं, अनेक बार चलते हैं, चलते रहते हैं। सतयुग से कलयुग तक जो अच्छा हुआ वह रिपोर्ट होता रहता है, ऊपर से लेकर अंत तक। तुम्हारी बुद्धि में मूल वतन, सूक्ष्म वतन और सृष्टि का चक्र बस, और कोई धाम से तुम्हारा कोई काम नहीं। तुम बहुत सुख देने वाले वाला है, उनको उनका जब समय आएगा तब वे आएंगे। नंबर वार जैसे जैसे आए हैं ऐसे ही फिर जाएंगे। तुम और धर्म की क्या, धर्म का क्या वर्णन करेंगे। तुमको सिर्फ एक बात की ही याद रहनी चाहिए, चित्र आदि ये सब भूल कर एक बात को याद करना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं। कितना क्लियर बाबा शब्द करते हैं, सिर्फ एक को ही। वे समझते हैं परम आत्मा लिंग है, अब लिंग समान कोई चीज हो कैसे सकती है, वे भला ज्ञान कैसे सुनाएगा, लिंग कैसे कोई ज्ञान सुनाएंगे। क्या प्रेरणा से कोई लाउड स्पीकर रखेंगे तो तुम सुनेंगे, प्रेरणा से तो कुछ होता नहीं। ऐसे नहीं शंकर को प्रेरते हैं, ये सब ड्रामा में पहले से ही नूंद है। विनाश तो होने का है, क्या ही जैसे तुम आत्माएं शरीर द्वारा बात करते हो वैसे परम आत्मा भी तुम बच्चों से बात करते हैं। उनका पार्ट ही दिव्य अलौकिक है, पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बात है। कहते हैं मेरा पार्ट सबसे न्यारा है, कल्प पहले जो आए होंगे वे आते रहेंगे, जो कुछ भी पास हुआ ड्रामा, इसमें जरा भी फर्क नहीं। फिर पुरुषार्थ का ख्याल रखना, ऐसे नहीं ड्रामा अनुसार हमारा काम पुरुषार्थ चलता है। फिर तो पद भी बहुत कम हो पड़ेगा। पुरुषार्थ को तेज करना है, पुरुषार्थ को तेज करना है, करना चाहिए। ड्रामा पर छोड़ नहीं देना चाहिए। अपना अपने चार्ट को देखते रहो, बढ़ाते रहो, नोट रखो। हमारा चार्ट बढ़ता जाता है, कम तो नहीं होता है। बहुत खबरदारी चाहिए। यहाँ तुम्हारा ब्राह्मणों का संघ, बाहर में सभी है कुसंग में, ये सभी उल्टा ही सुनाते हैं। ये सब क्या करते हैं, उल्टा सुनाते हैं। कब बाप तुमको कुसंग से निकालते हैं, बाप तुम्हें क्या करते हैं, कुसंग से निकालते हैं। मनुष्यों ने कुसंग में आकर अपना रहन सहन, अपनी पैरवाइज आदि सब बदल दी, देश वेश ही बदल दिया। ये भी जैसे अपने धर्म का की इंसल्ट की है। देखो कैसे कैसे बाल बनाते हैं, बे अभिमान हो जाता है। 100 रुपया 150 रुपया देते हैं सिर्फ बाल बनाने के लिए, और इसको कहा जाता है अति दे अभिमान। वे फिर कभी ज्ञान उठा ना सके। बाबा कहते हैं बिल्कुल सिंपल बनो, ऊंची साड़ी भी नहीं पहनने, ऊंची साड़ी भी नहीं पहनते हैं। दे अभिमान आता है, दे अभिमान तोड़ने के लिए सब हल्का कर देना चाहिए। अच्छी चीज दे अभिमान में लाती है। दुनिया की जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो सब दे अभिमान में लाती हैं। तुम इस समय वनवा में हो ना, हर चीज से मुंह हटाना है, बहुत साधारण रहना है। शादी आदि में भल रंगीन कपड़े आदि पहनकर जाओ, तोड़ निभाना अर्थ पहनना, तोड़ निभाने अर्थ पहनना है रंगीन कपड़े तो उनको बुरा नहीं लगे। फिर घर में वो आकर उतार दिया, तुमको तो वाणी से परे जाना है, आवाज भी नहीं, वाणी से परे। वान प्रस्थी सफेद पोष में होते हैं, तुम एक छोटे बड़े सब वान प्रस्थी हो। छोटे बच्चों को भी सिर्फ बाबा की ही याद दिलानी है, इसमें ही कल्याण है, इसमें ही कल्याण है। बस हमको अभी जाना है, कहाँ जाना है, शिव बाबा के पास। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बात की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। भावना के लिए मुख्य स्थान, सदा ध्यान रहे कि सदा हमारी कोई भी चलन देह अभिमान वाली नहीं, बहुत सिंपल रहना है। किसी भी चीज में ममत्व नहीं रखना है, कुसंग से अपनी संभाल करनी है। याद की मेहनत से सर्व कर्म बंधनों को तोड़ कर्मातीत बनना है। कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रहे, सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है। वरदान, विशाल बुद्धि विशाल देह से अपने तन की अनुभूति कराने वाले मास्टर रचयिता भाव। मास्टर रचयिता की पहली रचना है, रचना ये है कि देह के मालिकपन में संपूर्ण सफलता प्राप्त कर लेते हैं। वे अपने स्नेह व संपर्क द्वारा सर्व को अपनापन का अनुभव कराते हैं। इसी उस आत्मा के संपर्क से सुख की दातापन की शांति प्रेम आनंद सहयोग हिम्मत उत्साह उमंग किसी न किसी विशेषता का की अनुभूति होती है। उन्हें ही कहा जाता है विशाल बुद्धि विशाल दिल वाले। स्लोगन है उमंग उत्साह के पंख द्वारा सदा उड़ती कला का अनुभूति करते चलो। अव्यक्त इशारे हैं संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। स्वयं को सर्व संकल्प श्रेष्ठ को स्वयं को श्रेष्ठ संकल्पों से संपन्न बनाने के लिए ट्रस्टी बनकर रहो, ट्रस्टी बनकर रहो। ट्रस्टी बनना अर्थात डबल लाइफ परिश्रम बनना। ऐसे बच्चों को हर श्रेष्ठ संकल्प सफल होता है। एक श्रेष्ठ संकल्प बच्चे का और हजार श्रेष्ठ संकल्पों का फल बाप द्वारा प्राप्त होता है। एक का हजार गुना मिल जाता है, एक का हजार गुना मिल जाता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।